एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सेल्फ हेल्प की दुनिया में ना काफी हलचल मचाई है।
हाँ, और नाम भी इसका बड़ा अनोखा है, मार्क मैनसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक।
बिल्कुल।
ये किताब मुझे लगता है आज के जमाने में बहुत जरूरी हो गई है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां देखो सोशल मीडिया है, हर कोई परफेक्ट दिख रहा है, एक लगातार दबाव सा रहता है, बेहतर बनो, ज्यादा खुश रहो, ज्यादा सफल हो जाओ।
सही कहा, हर तरफ से जैसे उम्मीदों का बोझ।
और ये किताब इसी चीज पर, इसी प्रेशर पर सवाल उठाती है।
हाँ, एक तरह से उस अंधी दौड़ पर ब्रेक लगाती है। मैनसन हमें रोकते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई हम किन चीजों की इतनी परवाह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं,
क्या वो जरूरी भी है?
जमीनी ज्यादा असली लगता है।
तो चलिए आज इसी किताब की थोड़ी गहराइयों में उतरते हैं।
हाँ, समझते हैं कि मैनसन का ये जरूरी चीजों की ही परवाह करने का फंडा आखिर है क्या
और हमारे लिए ये कितना काम का हो सकता है।
शुरुआत करते हैं लेखक से, मार्क मैनसन। दिलचस्प बात है, ये कोई पारंपरिक टाइप के गुरु या साइकोलॉजिस्ट नहीं है।
हाँ, मैंने भी पढ़ा इनके बारे में, ब्लॉगर थे पहले।
हाँ, ब्लॉगर के रूप में शुरू हुए, फिर उद्यमी बने और अब तो खैर सफल लेखक है। उनकी पहचान ही उनकी बेबाक सीधी खरी खरी बात कहने वाली स्टाइल से है। थोड़ी तीखी भी लगती है कई बार।
हाँ वही,
पर इसी ने लाखों पाठकों को, खासकर युवाओं को, अपनी तरफ खींचा है।
उनकी यही बात खास है, मतलब कोई लच्छेदार बातें नहीं, मीठी गोलियां नहीं,
बिल्कुल नहीं,
सीधी बात। उन्होंने फिलॉसफी साइकोलॉजी पढ़ी जरूर है, लेकिन वो उसे अपने अनुभवों के साथ मिलाकर पेश करते हैं।
हाँ, अपने अनुभवों, यात्राओं और दुनिया को देखने का उनका जो नजरिया है उसे मिला देते हैं। उनका ब्लॉग इसीलिए बहुत चला क्योंकि वो डेटिंग से लेकर जिंदगी के बड़े सवालों तक पर बिना लाग लपेट के लिखते थे।
अच्छा,
उनका नजरिया इसीलिए भी फ्रेश लगता है क्योंकि वो जो पारंपरिक सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है ना,
हाँ हाँ,
उसकी कई घिसी पिटी बातों को चैलेंज करते हैं, जहां सब कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो।
हमेशा खुश रहो।
हाँ, मैनसन कहते हैं रुको जरा, जीवन की कड़वी सच्चाइयों, मुश्किलों, नेगेटिव फीलिंग्स को भी स्वीकार करना जरूरी है। ये चीज उन्हें एक अलग आवाज बनाती है। वो पारंपरिक सलाह पर सवाल उठाते हैं और हमें थोड़ा ज्यादा ईमानदारी से सोचने पर मजबूर करते हैं।
तो फिर ये किताब असल में है किस बारे में? नाम से तो लगता है कि शायद लापरवाह हो जाओ, किसी चीज की फिक्र मत करो।
हाँ, पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गहराई में ना जीवन जीने का एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है।
अच्छा,
इसका जो मेन तर्क है वो ये है कि एक अच्छा सार्थक जीवन समस्याओं को खत्म करके या हमेशा खुश रहकर नहीं मिलता।
तो फिर कैसे मिलता है?
ये इस बात से तय होता है कि हम कौन सी समस्याएं चुनते हैं, किन मूल्यों के लिए हम लड़ने को, स्ट्रगल करने को तैयार हैं।
अच्छा, मतलब समस्याओं से भागना नहीं बल्कि सही समस्याएं चुनना।
एग्जैक्टली। मैनसन जिसे नॉट गिविंग अ फक कहते हैं, उसका मतलब उदासीन होना या सब कुछ छोड़ देना नहीं है।
तो क्या है मतलब?
मतलब है सोच समझकर चुनना कि हमें अपनी लिमिटेड एनर्जी, अपना ध्यान, अपनी परवाह कहाँ लगानी है। ये गैर जरूरी चीजों को, जो शोर शराबा है, उसे इग्नोर करने और सिर्फ उन चीजों पर फोकस करने की कला है जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं।
जैसे कि हमारे मूल्य, हमारे रिश्ते।
हाँ, हमारे चुने हुए मूल्य, रिश्ते, हमारी कमिटमेंट्स। ये अपनी भूमिका को स्पष्ट करने जैसा है कि आप जीवन में किस चीज के लिए खड़े होना चाहते हैं।
ये किताब एक और चीज की बात करती है, वो है फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। ये क्या चीज है?
हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है बुरा महसूस करने के बारे में और बुरा महसूस करना।
जैसे?
जैसे मान लीजिए आप किसी बात पर थोड़ा एंग्जियस महसूस कर रहे हैं।
ठीक है।
फिर आप इस बात पर और एंग्जियस हो जाते हैं कि मैं इतना क्यों घबरा रही हूँ, या अरे मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए।
हाँ हाँ, होता है ऐसा।
मैनसन कहते हैं कि ये जो लूप है ना, ये हमें और ज्यादा दुखी करता है। किताब इसी सवाल का जवाब ढूंढती है कि ऐसी दुनिया में जहां लगातार बेहतर बनने का प्रेशर है, वहां एक ऑथेंटिक, एक संतोषजनक जीवन कैसे जिया जाए।
और मैनसन का जवाब क्या है?
उनका जवाब काफी सीधा है, वास्तविकता को स्वीकार करो।
कैसी वास्तविकता?
दुख, अनिश्चितता, असफलता, यहां तक कि मौत, इन सबको जीवन का हिस्सा मानो। जब हम इनसे भागना बंद कर देते हैं, तभी हम उन चीजों को चुन पाते हैं जो सच में जरूरी हैं। ये उन लोगों के लिए है जो उस सतही पॉजिटिविटी से थक गए हैं और जीवन के लिए एक ज्यादा टिकाऊ, यथार्थवादी नजरिया चाहते हैं।
चलिए अब थोड़ा किताब के अध्यायों में चलते हैं। पहला ही चैप्टर है कोशिश मत करो, डोंट ट्राई। ये तो बड़ा उल्टा सा लगता है ना?
हाँ बिल्कुल, पहली बार सुनने में अजीब लगता है। यहाँ मैनसन बैकवर्ड्स लॉ की बात करते हैं।
बैकवर्ड्स लॉ, वो क्या है?
यानी आप जितना ज्यादा खुश होने की कोशिश करेंगे उतने ही नाखुश महसूस करेंगे।
अच्छा।
हाँ मतलब पॉजिटिव एक्सपीरियंस की इच्छा रखना ही अपने आप में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बन जाता है।
ये तो सचमुच उल्टा है।
और इसका उल्टा भी सच है, किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस को स्वीकार कर लेना जैसे डर या दुख, वो अपने आप में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो सकता है। मैनसन चार्ल्स बुकोव्स्की जैसे लेखक का उदाहरण देते हैं, जो अपनी कमियों अपनी असफलताओं को लेकर बहुत ईमानदार थे। उन्होंने महान बनने की कोशिश नहीं की, बस वो जो थे वैसे रहे और लिखते रहे।
तो इस चैप्टर का सार क्या हुआ?
सार ये है कि अपनी नेगेटिव फीलिंग से भागो मत, उन्हें दबाओ मत, उन्हें स्वीकार करना सीखो। यही सही चीजों की परवाह करने की पहली सीढ़ी है। हर समय परफेक्ट या खुश दिखने के दबाव की परवाह करना छोड़ दो।
ठीक है, अगला चैप्टर है खुशी एक समस्या है, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। ये भी थोड़ा चौंकाने वाला है, हम तो सोचते हैं खुशी मतलब प्रॉब्लम का ना होना।
हाँ आमतौर पर यही सोच है, लेकिन मैनसन कहते हैं कि जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती।
कभी नहीं?
नहीं, बस उनका रूप बदलता रहता है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, वो कोई बीमारी नहीं है जिनका इलाज करना है। खुशी समस्याएं न होने में नहीं है, बल्कि उन समस्याओं को हल करने में है जिन्हें हल करने में आपको मजा आता है या जो आपके लिए मायने रखती हैं।
अच्छा, मतलब सही समस्या चुनना।
बिल्कुल, यहाँ वो बुद्ध की कहानी का जिक्र करते हैं कि कैसे उन्होंने दुख को जीवन की सच्चाई माना। सवाल ये नहीं कि समस्याओं से कैसे बचें, सवाल ये है कि आप कौन सी समस्याएं चुनना चाहते हैं,
आप किस तरह का दर्द या संघर्ष झेलने को तैयार हैं।
हाँ, यही चुनाव आपके जीवन को दिशा देता है, सार्थकता देता है। ये अपनी भूमिका को चुनने जैसा है कि आप किन चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं।
फिर आता है अध्याय 3, आप खास नहीं हैं, यू आर नॉट स्पेशल। ये तो आज के जमाने के लिए बहुत जरूरी लगता है।
हाँ बहुत ज्यादा, हमें हर तरफ से यही सुनने को मिलता है, तुम यूनिक हो, तुम स्पेशल हो, तुम कुछ बड़ा करोगे,
सोशल मीडिया पर तो खासकर।
हाँ मैनसन कहते हैं कि ये जो हकदारी की भावना है, ये जो एंटाइटलमेंट है, ये हमें असल में दुखी करता है।
क्यों?
क्योंकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग ज्यादातर चीजों में औसत ही होते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है।
ये सुनना थोड़ा कड़वा है।
हाँ लग सकता है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई है। सोशल मीडिया पर सब बेस्ट दिखाते हैं तो हमें लगता है हम ही पीछे हैं। मैनसन कहते हैं असली सेल्फ रिस्पेक्ट इस सच को स्वीकार करने से आती है कि हम औसत हैं, और फिर उस साधारण जीवन में छोटे छोटे वास्तविक सुधार करने से।
मतलब औसत होना ठीक है?
बिल्कुल ठीक है, इसे स्वीकार करने में एक तरह की आजादी है, अवास्तविक उम्मीदों का बोझ उतर जाता है।
अगला है अध्याय 4, दुख का मूल्य, द वैल्यू ऑफ सफरिंग।
दुख का भी कोई मूल्य हो सकता है?
मैनसन के हिसाब से हाँ, वो कहते हैं दर्द और दुख सिर्फ नेगेटिव चीजें नहीं है, ये जरूरी सिग्नल्स हैं।
सिग्नल किस चीज के?
ये बताते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। यही वो सेल्फ अवेयरनेस अनियन की बात करते हैं, आत्म जागरूकता वाला प्याज।
प्याज मतलब परतें?
हाँ कई परतें। पहली परत, अपनी भावनाओं को पहचानो, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ रही हूँ।
ठीक है।
दूसरी परत, समझो कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, कारण क्या है।
और तीसरी सबसे गहरी परत, अपने पर्सनल वैल्यूज को समझो। हमारे मूल्य ही तय करते हैं कि हम किन चीजों को अच्छा या बुरा, सफल या असफल मानते हैं।
हमारी फीलिंग्स हमारे वैल्यूज से जुड़ी होती हैं।
अक्सर हाँ, मैनसन अच्छे और बुरे मूल्यों में फर्क बताते हैं। अच्छे मूल्य जैसे ईमानदारी, क्रिएटिविटी, मदद करना, ये आंतरिक होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं।
और बुरे मूल्य?
बुरे मूल्य जैसे सबको खुश करना, दिखावे का पैसा, हमेशा सही होना, ये बाहरी होते हैं, अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर। अपने मूल्यों को समझना ही ये तय करने की कुंजी है कि कौन सा दुख या संघर्ष हमारे लिए सहने लायक और सार्थक है।
यहीं पर हमारी भूमिका और लक्ष्य तय होते हैं।
बिल्कुल।
अध्याय 5 है, आप हमेशा चुन रहे हैं, यू आर ऑलवेज चूजिंग।
ये जिम्मेदारी के बारे में है।
हाँ, और ये बहुत पावरफुल आइडिया है।
यहाँ मेंशन दोष, फॉल्ट और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क करते हैं।
दोष और जिम्मेदारी ये अलग कैसे हैं?
दोष मतलब किसी घटना के लिए कौन जिम्मेदार था जो अतीत में हुआ। जिम्मेदारी मतलब हम उस घटना पर आज कैसे रिएक्ट करते हैं।
अच्छा,
हो सकता है किसी बुरी चीज के लिए हम दोषी ना हो, कोई एक्सीडेंट, बचपन का बुरा अनुभव,
हाँ,
लेकिन हम उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसकी जिम्मेदारी हमेशा हमारी होती है।
हम हमेशा चुन रहे होते हैं।
हाँ, चाहे वो सिर्फ हमारा नजरिया ही क्यों ना हो, विक्टिम बने रहने की बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना हमें ताकत देता है। ये अपनी कहानी का कंट्रोल वापस लेने जैसा है।
अध्याय 6, आप हर चीज के बारे में गलत हैं लेकिन मैं भी हूँ। ये थोड़ा अजीब टाइटल है।
हाँ, ये अनिश्चितता और शक के महत्व पर जोर देता है। मैनसन कहते हैं, अगर हमें सीखना है, ग्रो करना है, तो ये मानना पड़ेगा कि हम गलत हो सकते हैं। वो जो निश्चितता का भाव होता है ना, मैं ही सही हूँ, वो अक्सर हमें नई चीजें सीखने से रोकता है।
सही बात है।
वो मैनसन लॉ ऑफ अवॉइडेंस की बात करते हैं।
वो क्या है?
जिन चीजों से हमारी पहचान या हमारे गहरे विश्वासों को खतरा लगता है, हम उनसे बचते हैं।
हाँ, ऐसा होता है।
लेकिन विकास तभी होता है जब हम अपने विश्वासों पर सवाल उठाने और उन्हें बदलने को तैयार हों। विनम्रता जरूरी है ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते।
अगला है अध्याय 7, असफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। फेलियर इज द वे फॉरवर्ड।
हाँ, ये असफलता को देखने का नजरिया बदल देता है। मैनसन कहते हैं, फेलियर कोई अंत नहीं है,
तो क्या है?
ये सीखने और सफल होने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो आप फेल होंगे ही। डर फेलियर का नहीं होना चाहिए, बल्कि फेलियर से कुछ ना सीखने का होना चाहिए।
अच्छा पॉइंट है।
यहाँ वो कुछ करो सिद्धांत देते हैं, मतलब मोटिवेशन का इंतजार मत करो,
तो क्या करें?
बस काम करना शुरू कर दो, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। अक्सर एक्शन से ही प्रेरणा आती है, ना कि प्रेरणा से एक्शन होता है।
एक्शन प्रेरणा मोटिवेशन, ये साइकिल है।
एग्जैक्टली।
फिर है अध्याय 8, ना कहने का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो, ये बाउंड्रीज के बारे में।
हाँ, बाउंड्रीज और रिजेक्शन। मैनसन कहते हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ और हेल्दी रिश्तों के लिए ना कहना उतना ही जरूरी है जितना हाँ कहना।
ये कैसे?
देखिए, जब आप किसी एक चीज को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में ही सही कई दूसरी चीजों को ना कह रहे होते हैं। ये ना ही हमारे हाँ को वैल्यू देता है। अगर आप सबको हर चीज को हाँ कहते रहेंगे तो आपकी कमिटमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा।
सही बात है।
हेल्दी रिश्तों में भी ईमानदारी जरूरी है। जरूरत पड़ने पर ना कहना जरूरी है, भले ही उसे थोड़ी देर के लिए टकराव हो।
और रिजेक्शन?
रिजेक्शन जीवन का हिस्सा है, उसे स्वीकार करना हमें मजबूत बनाता है।
और आखिरी अध्याय 9, और फिर आप मर जाते हैं, एंड देन यू डाई। ये तो काफी सीधा है।
हाँ, ये सीधा मौत की सच्चाई का सामना करवाता है। मैनसन अर्नेस्ट बेकर जैसे विचारकों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हम इंसान अक्सर अपनी नश्वरता के डर से बचने के लिए जीते हैं।
कैसे?
हम अमरता प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे नाम कमाना, कोई लेगेसी छोड़ना, ताकि हमें लगे कि हम मौत के बाद भी बने रहेंगे। लेकिन मैनसन का तर्क है कि मौत के बारे में सोचना डरावना होने के बजाय आज़ादी दे सकता है।
आज़ादी? कैसे?
जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा टाइम लिमिटेड है, तो हमारी प्रायोरिटीज ज्यादा क्लियर हो जाती हैं।
हाँ, ये तो है।
ये हमें समझने में मदद करता है कि सच में क्या इम्पोर्टेंट है और अपनी लिमिटेड परवाह कहाँ खर्च करनी चाहिए। मौत का एहसास हमें प्रेजेंट में जीने और उन वैल्यूज और गोल्स पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे लिए सच में मायने रखते हैं।
वाकई इन अध्यायों में बहुत गहरे विचार हैं। अगर हमें इस किताब के कुछ मेन मैसेजेस को समेटना हो तो क्या होंगे वो?
हाँ, कुछ चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहला, जहरीली पॉजिटिविटी से सावधान रहो। हर समय खुश रहने का प्रेशर अवास्तविक है, नुकसानदेह भी है। अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को स्वीकार करना जरूरी है, वो भी कुछ बताती हैं।
दूसरा, अपने संघर्ष खुद चुनो। जीवन में समस्याएं रहेंगी, लक्ष्य उनसे मुक्त होना नहीं बल्कि सार्थक संघर्ष चुनना है जो हमारे वैल्यूज से जुड़े हों। आप कौन सी समस्याएं हल करना चाहते हैं, यही जीवन को अर्थ देगा।
तीसरा, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लो। जो हुआ उसके लिए शायद आप दोषी न हो, पर आप रिएक्ट कैसे करते हैं इसकी जिम्मेदारी हमेशा आपकी है। विक्टिम मोड से बाहर निकलो।
चौथा, अपने मूल्यों को पहचानो और उनके हिसाब से जियो। हमारे वैल्यूज, हमारी प्राथमिकताएं, हमारी भावनाएं हमारी लाइफ की क्वालिटी तय करते हैं। अच्छे आंतरिक मूल्य चुनो और उनके अनुसार जियो।
और पांचवा, दर्द, असफलता और अनिश्चितता को गले लगाओ। ये जीवन का हिस्सा हैं, ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। इनसे भागो मत, इनसे सीखो।
ये बातें सच में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। हम देखते हैं लोग कैसे प्रेशर में रहते हैं सफल देखने के।
हाँ, या सोशल मीडिया पर तुलना करके दुखी होते हैं,
या रिश्तों में बाउंड्रीज नहीं बना पाते।
बिल्कुल, ये किताब हमें रोकती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हम किन चीजों को बेवजह इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं।
किताब में कुछ कोट्स भी जबरदस्त है ना?
हाँ बिल्कुल, कई ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं।
जैसे एक वो बैकवर्ड्स लॉ वाली बात, ज्यादा सकारात्मक अनुभव की इच्छा अपने आप में एक नकारात्मक अनुभव है, और विरोधाभासी रूप से किसी के नकारात्मक अनुभव की स्वीकारती अपने आप में एक सकारात्मक अनुभव है।
हाँ ये कमाल की है। मतलब खुशी के पीछे भागना छोड़ो, मुश्किलों को स्वीकार करो, शायद शांति वहीं मिले।
एक और, आप कौन हैं ये इस बात से परिभाषित होता है कि आप किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं।
बहुत गहरा। हमारी पहचान हमारे एक्शन से बनती है, सिर्फ बातों या इच्छाओं से नहीं। हम किन वैल्यूज के लिए टिकते हैं, किन मुश्किलों का सामना करते हैं।
हाँ, और वो जिम्मेदारी वाली बात, हम हमेशा ये नियंत्रित नहीं करते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम हमेशा ये नियंत्रित करते हैं कि हम जो होता है उसकी व्याख्या कैसे करते हैं और हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं।
और आखिर में वो एक्शन वाली सलाह, अगर आप किसी समस्या पर अटके हुए हैं तो वहां बैठ के उसके बारे में सोचे नहीं, बस उस पर काम करना शुरू कर दें। काम करने का सरल कार्य अंततः सही विचारों को आपके दिमाग में लाएगा।
हाँ, ये कुछ करो वाला फंडा, एक्शन से अक्सर क्लैरिटी आती है।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन असल जिंदगी में कैसे उतारें इन बातों को, कुछ प्रैक्टिकल तरीके?
हाँ बिल्कुल, जैसे मेंटल हेल्थ के लिए, अगली बार जब उदास या एंग्शियस लगें तो खुद को कोसो मत।
तो क्या करें?
उस फीलिंग को स्वीकार करो, पूछो ये क्या बताने की कोशिश कर रही है। वो फीडबैक लूप फ्रॉम हेल तोड़ने में मदद मिलेगी।
काम या करियर में?
सिर्फ सैलरी या पोस्ट मत देखो, सोचो आप किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, कौन से चैलेंज आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। फेलियर को लर्निंग मानो, अपनी पहचान का एंड नहीं।
और रिश्तों में?
बाउंड्रीज बनाओ, जहां जरूरी हो ईमानदारी से ना कहना सीखो, दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी लो और सोल्यूशन पर फोकस करो।
और निर्णय लेते समय?
अपने वैल्यूज को गाइड बनाओ, जब कंफ्यूजन हो पूछो, क्या ये मेरे लिए सच में मायने रखता है, या वो आखिरी सवाल, क्या ये मौत के टाइम मायने रखेगा। हाँ, ये अक्सर फालतू चीजों को हटाने में मदद करता है।
और सोशल मीडिया?
हाँ, सोशल मीडिया यूज करते हुए लगातार तुलना से बचो, याद रखो वो फिल्टर्ड सच है। अपनी असलियत, अपनी औसत चीजों को स्वीकार करो, अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जो आपके कंट्रोल में है और आपकी लाइफ बेहतर बनाती हैं।
तो कुल मिलाकर ये किताब एक तरह से बोझ हल्का करने में मदद करती है।
हाँ, गैर जरूरी बोझ उतार फेंकने में, और अपनी सीमित परवाह को समझदारी से खर्च करना सिखाती है।
इस पूरी बातचीत के बाद आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे अहम बात क्या रही इस किताब से?
मेरे लिए शायद ये कि सार्थकता आसानी से नहीं मिलती, वो अक्सर संघर्ष से ही आती है, और अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने में ही असली ताकत और आजादी है। ये किताब प्रॉब्लम्स गायब नहीं करती, पर बेहतर प्रॉब्लम्स चुनने में मदद करती है। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका सामना करना हमारे लिए मायने रखता है, जो हमारे वैल्यूज से जुड़ी हैं। ये खुशी के पीछे भागने की बजाय एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ इशारा करती है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि असली आजादी शायद सब कुछ पा लेने में नहीं है, बल्कि ये चुनने में है कि क्या वाकई जरूरी है।
हाँ।
अपनी एनर्जी, अपना ध्यान सही जगह लगाना, सही संघर्ष चुनना, यही शायद जिंदगी की कला है। अपनी भूमिका समझना और उन लक्ष्यों को प्रायोरिटी देना जो सच में हमारे हैं।
ये पारंपरिक सेल्फ हेल्प से बिल्कुल अलग है।
हाँ, थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर शायद ज्यादा असरदार और टिकाऊ नजरिया देती है।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।